सारी काश 12 ना
12 लेक्चर नंबर 2
शनिवार तारीख 12 लेक्चर नंबर 2 ॐ नमः सिद्धेश ॐ नमः सिद्धेश ॐ नमः सिद्धेश ॐ शुद्धात्मने नमः जं जस्य जं देशे जेन विहारेण जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अहवमरणं वा संतस्य कम्मि देशे तेन विहारेण तम्मि कालम्मि कोशकदिवारे दुम् इन्दो वा सह जिनेन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानदि दौवाणि सौवपजाये शोषदिट्ठि शुद्धो जो शङ्कदि सोहुकुदिष्ठि। जिनागम के आधार से हम कारण और कार्य की जो व्यवस्था है प्रत्येक द्रव्य में उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसमें से जो एक विषय है छह कारक का, षट कारक जिसको कहते हैं, उसमें हम कर्ता कारक की बात अपनी चल रही थी। 101 पृष्ठ पर गुजराती 101 है तो हमने देखा था कि जब जब कार्य होता है तो ये जो चार प्रकार के कर्ता कारक हैं, एक तो निमित्त और तीन प्रकार के उपादान, वो तो होते ही होते हैं, ये चारों ही वहाँ उपस्थित रहते हैं और ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। इसमें से कर्ता कारक जहाँ लिखा है उसके बाद दूसरा पैराग्राफ वहाँ से हम पढ़ेंगे। कर्ता की परिभाषा में हमने ये परिभाषाएं पहले देखी थी, क्या थी वो, कि जो स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करता है। देखो ये कर्ता कारक की परिभाषा हमने देखी थी, निकालो, ये पृष्ठ संख्या है 2-3 पेज पहले चला जाना, 96 है, हाँ, हिंदी में 95 है। कर्ता कारक के आगे क्या लिखा है, जो स्वाधीन पने से स्वयं के परिणाम को करता है वह करता है। तो ये जो यहाँ स्वाधीनता पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करता है लिखा है अपने पेज पर ना, अभी 101 पर, उसमें स्वतंत्रता पूर्वक यानी स्वाधीनता पूर्वक ये शब्द महत्व का है। यदि स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करता ऐसा नहीं लिखते, वह नहीं होगा तो अन्य द्रव्य भी इस कार्य का कर्ता होने का प्रसंग आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि रोटी आटे से बनी, हमने देखा जो स्वयं उस रूप परिणमित होता है वह उसका कर्ता है। तो रोटी आटे से भी बनी और बाई से भी बनी ऐसा प्रसंग आएगा, क्योंकि जो स्वाधीन पने से अपने परिणाम को करता है वो करता, ऐसा हमने देख लिया। ऐसा अगर नहीं मानेंगे तो आटे से भी बनी और बाई ने भी बनाई, दोनों ही उसके कर्ता हो जाएंगे। घड़ा मिट्टी ने बनाया और कुम्हार ने भी बनाया, ऐसा प्रसंग आएगा। शब्द हम जो बोल रहे हैं वो मेरा कार्य है कि नहीं, नहीं, जीव का नहीं है तो किसका है, भाषा वर्गना का। तो शब्द भाषा वर्गना का कार्य है और जीव का भी कार्य, ऐसा प्रसंग आएगा। यह अक्षरों की रचना जो हम लिखाई राइटिंग लिखते हैं, स्याही कर रही है और मैं भी कर रही हूँ, ऐसा प्रसंग आएगा। ऐसा तो नहीं है, दोनों ही उसके कर्ता तो है ही नहीं है। तुम पूछोगी जीव राग द्वेष आदि विकार भी स्वतंत्रता से ही करता है ना, क्या कहा, ये जीव की पर्याय है तो जीव ही स्वाधीन पने से स्वतंत्रता से करता है ना। तो कहते जीव विकार करता है वह उसके अशुद्ध उपादान द्वारा। इसको उपादान को कैसा उपादान कहा, अशुद्ध, तत्समय की पर्याय की योग्यता से, क्योंकि अशुद्ध पर्याय है, विभाव पर्याय है, इसलिए उसको अशुद्ध उपादान वाला कहा है उसके भी जीव की उस समय की पर्याय की योग्यता है कि उस राग रूप क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमने की उस पर्याय के स्वतंत्र षटकारकों के द्वारा करता है, परंतु वह जीव का स्वभाव नहीं है। कौन सा? राग द्वेष करना, यह उसका त्रिकाली कायमी स्वभाव नहीं है। भले वो अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, परंतु उसका जैसे ज्ञान जीव का स्वभाव है, वैसे राग द्वेष जीव के स्वभाव नहीं है। यह बताने के लिए निमित्त का यानी द्रव्य कर्म के उदय का ज्ञान कराया जाता है। कर्मों के उदय में यहाँ जीव राग द्वेष करता है, करता तो अपने अशुद्ध उपादान से, फिर भी वो अशुद्ध पर्याय है, विभाव भाव है, उसका कायमी स्वभाव नहीं है, इसलिए निमित्त का ज्ञान कराया जाता है कि इसकी उपस्थिति में उसने राग द्वेष किए, परंतु कर्म ने नहीं कराए। हाँ बिल्कुल, जीव की शक्ति है। जैसे पानी का कायमी स्वभाव शीतल है, परंतु अग्नि के संयोग में गर्म होने का स्वभाव भी पानी का ही है। अग्नि के कारण अग्नि उसका कर्ता मानेंगे तो अग्नि से तो एस्बेस्टस भी गर्म होना चाहिए था, वो तो नहीं हो रहा, पानी क्यों गर्म हो रहा है?
शक्ति शब्द यूज करा तो गुण के गुण बता।
हाँ, एक वैभाविक शक्ति ऐसी शक्ति है कि जीव में विभाव रूप परिणमने की योग्यता है। पुद्गल में भी ऐसी है, परंतु धर्म धर्म आकाश काल में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, वो तो हमेशा स्वभाव रूप ही परिणमन करे, परंतु वैभाविक शक्ति है इसलिए विभाव ही करता रहे ऐसा नहीं है कि जीव में विभाव रूप होने की उसकी योग्यता है, परंतु वो वैभाविक शक्ति इसलिए कायम विभाव रूप परिणमता है तो इसलिए विभाव उसका स्वभाव, ये बात नहीं है।
शक्ति में जो खुद अपनी कमी से अपनी नबड़ाई से वो जुड़ता है,
वैभव शक्ति में जुड़ना नहीं कहते,
जो राग द्वेष में खुद,
वो हाँ राग द्वेष में खुद जुड़ता है,
खुद जुड़ता है अपनी अपनी, हम गुजराती में नबड़ाई शब्द आप हिंदी में कहते
हैं, बिल्कुल उसकी कमजोरी है,
अपनी कमजोरी से जुड़ता है,
बिल्कुल, क्योंकि
अपनी कमजोरी से जुड़ता है वो बात साची है, लेकिन ये जो विभाव रूप परिणमन हो रहा है उसमें वैभाविक शक्ति निमित्त है, वो वैभाविक शक्ति शक्ति यानी गुण लेना, गुण कभी नहीं रहेगा क्योंकि गुण हम उसी को कहेंगे कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में तीनों काल वो गुण उसमें रहेगा, तो फिर इसको स्वभाव रूप परिणमने का चांस ही नहीं है। लेकिन जब जब यह जीव विभाव रूप से परिणमित होता है या खुद कर लिए समझ लेना, तो वहाँ उसमें निमित्त क्या है?
यानी ये सिद्ध भगवान है, सिद्धों में भी वो शक्ति है, परंतु वो कैसे स्वभाव रूप परिणम चल रहा है उनका? नहीं नहीं नहीं, वो उस गुण, वो ऐसा जीव में ऐसी योग्यता है कि वो विभाव रूप परिणम सकता है, बस इतने वैभाविक शक्ति लेना, वैभाव शक्ति शुद्ध रूप से परिणमित हो रही है, परिणमित हो रही है। हाँ,
जैसा हम देखते हैं क्रियावती शक्ति है जीव में, तो क्रियावती शक्ति का काम क्या है? दो प्रकार का है, एक तो गति रूप होना या स्थिति रूप होना। तो अब सिद्धों में क्या हो रहे हैं, उनमें क्रियावती शक्ति है कि नहीं? स्थिति रूप अंदर में, वैसे यहाँ वैभाविक गुण अभी विभाव में निमित्त है, अभी वहाँ क्या हो रहा है कि वो स्वयं स्वभाव रूप परिणमित हो रही है।
देखो इसी नीचे क्या करेगा आपने, जब जीव स्वयं की योग्यता से स्वतंत्रता से विभाव अर्थात मोह राग द्वेष करता है, तब पूर्वबद्ध कर्मों का उदय निमित्त होता है, यानी वहाँ उसकी परिचय उपस्थिति है। बस कर्म का उदय जीव को पराधीन नहीं बनाता, राग द्वेष नहीं कराता, करने वाला कौन है? जीव स्वयं ही, क्योंकि जो परिणमन करता है वो उसका करता है, यह परिणमति स करता। राग द्वेष रूप कौन परिणमित हुआ है? कर्म के जीव,
जीव
तो वही उसका करता है, फिर वो विभाव है इसलिए कहेंगे उसका अशुद्ध उपादान से वो उसको कर रहा है, तो उसमें निमित्त, जहाँ जहाँ विभाव है वहाँ वहाँ निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, तो निमित्त कौन है? पुराने कर्मों का उदय। फिर से अभी इसमें क्या समझना है, जीव राग द्वेष के रूप परिणमित हो रहा है, क्रोध हो रहा है उसका, तो क्रोध करना उसका कायमी स्वभाव है क्या? उसका स्वभाव तो ज्ञान स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव उसी को कहेंगे जो सिद्ध अवस्था में भी कायम रहेगा। सिद्धों के तो कोई राग द्वेष विकार है ही नहीं है, तो ये जीव का स्वभाव भाव नहीं हो सकता। एक बात तो निश्चित हुई, तो फिर भी क्यों हो रहे जीव में? तो कहते जीव में ऐसी योग्यता है कि वो विभाव रूप भी परिणमे। अब वो कब परिणमता है, क्यों परिणमता है, तो कहेंगे वहाँ उसको कर्म का निमित्त है, पुराने कर्मों का उदय चलता है, जैसे चारित्र मुनि का उदय हो रहा है, क्रोध नाम के कर्म का उदय यहाँ है और यहाँ जीव क्रोध कर रहा है। वो उदय आया इसलिए क्रोध हुआ ऐसा नहीं है ना, वो है बस वहाँ उपस्थित, क्योंकि अपनी सत्ता में क्रोध मान माया लोभ नामक कर्म के परमाणु सभी पड़े हैं। हम क्रोध करेंगे तो वहाँ क्रोध हाजिर है, हम कहेंगे क्रोध का उदय है। मान रूप परिणमेंगे तो मान के परमाणु वहीं पर पड़े, उसका उदय चालू हो जाता है। हम तो ऐसे उल्टा कहेंगे कि जैसे जीव के परिणाम है वैसा वहाँ उदय चल रहा है, हम उदय की ओर से बताएंगे तो कहेंगे जैसा उदय है वैसा जीव का परिणाम है। कथन हम किसी और से कर सकते हैं, परंतु जहाँ कार्य होता है तो उपादान से ही होता है, निमित्त वहाँ हाजिर है। सत्ता में तो सभी कर्म पड़े हैं, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, एक समय ऊपर सभी पड़े हैं। अब आप जो भाव करो वैसा उसका उदय कहलाएगा। यह परिणमति सहकर्ता, यानी जो स्वयं अपने परिणाम रूप परिणमित होता है, अपनी पर्याय रूप, वही उसका करता है, यानी द्रव्य अपनी पर्याय का करता है। अन्य कोई भी द्रव्य इस अन्य द्रव्य के पर्याय का करता नहीं है।
जो सब गुण की पर्याय होती है, ये विभाव गुण की पर्याय सब समय में होती है, तो वो
ये वैभाविक जो गुण है वो वैभाविक गुण ऐसा है कि जीव और पुद्गल में होता है, तो उसमें क्या है कि वो स्वभाव रूप भी परिणम सकते हैं, विभाव भी परिणमने की योग्यता है। अब जो उनका पर्याय उनका क्रम है, तो उसमें जब विभाव रूप परिणमित हो रहे हैं, तो जीव पुद्गल में ऐसी योग्यता है कि वो विभाव रूप परिणम है, बस इतना ही लेना। पानी में ही योग्यता है कि वो उसका कायमी स्वभाव शीतल होने पर भी वो अपनी योग्यता से विशिष्ट समय पर गर्म होवे, ऐसी योग्यता पानी में है। ये योग्यता वाली जो बात है उसको हम कहेंगे इसमें ऐसा विभाव रूप होने की योग्यता पड़ी है, फिर हम कहेंगे वो विभाव रूप हो रहा है, फिर हम कहेंगे वहाँ निमित्त भी कोई होता है, तो अग्नि के संयोग में पानी गर्म हो रहा है ऐसा हम कहेंगे, तो हम अग्नि से होता है ऐसा कह भी देंगे, परंतु ये कथन कैसा है, निमित्त को बताने वाला कथन। पानी स्वयं की योग्यता से गर्म होता है, तब हम निमित्त को कहेंगे ये उसका निमित्त है। ख्याल में आई बात?
अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे क्रियावती शक्ति नामक गुण जो है जिसको शक्ति भी कहते हैं, वो सिर्फ जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य में, इसलिए ना धर्म द्रव्य ना अधर्म द्रव्य एक जगह से दूसरी जगह जाते, गति रूप नहीं होता, जैसे आकाश द्रव्य काल द्रव्य है, वैसे ये वैभाविक शक्ति नाम का जो गुण है वो सिर्फ पुद्गल द्रव्य में और जीव द्रव्य में है, इसीलिए ये चार द्रव्य जो है उसका परिणमन हमेशा स्वभाव रूपी होगा, वो विभाव रूप परिणमन ही नहीं करेगा, क्योंकि वैसे शक्ति नहीं होती। तो जो हम देख रहे हैं कि विभाव रूप से परिणमना, जब पुद्गल स्कंद रूप हुआ तो उसका विभाव रूप काम चालू हो गया, जब जीव मोह राग द्वेष रूप परिणाम कर रहे हैं, विपरीत परिणाम कर रहे हैं, तो विभाव चल रहा है। यानी एक गुण के नाते हम बहुत सारे सिद्धांत ज्ञान में आते हैं,
यानी ये कर्म का उदय है इसलिए जीव को पराधीन होना पड़ा, राग द्वेष करना पड़ा, ऐसा नहीं है।
मुझे भी
हाँ,
हम तो ऐसा ही मानते हैं कि कर्म का उदय आया तो ऐसा भुगतना पड़ा।
हाँ, ये मान्यता ही गलत है।
हाँ,
क्योंकि कर्म का उदय कभी नहीं होगा, तो इसमें से छूटने का मार्ग ही नहीं होता, क्योंकि हरेक जीव का अनादि से कर्म से बंधा हुआ है, तो हरेक का कर्म का उदय तो चलेगा ही चलेगा, और कर्म के कारण अगर होता माने तो मोह राग द्वेष भी निरंतर होने चाहिए, फिर इतने जीवों ने जो समय दर्शन प्राप्त किया, सिद्ध अवस्था प्राप्त की, वो कैसे पॉसिबल होती? क्योंकि कर्म का उदय तो हमेशा बना रहेगा, तो उनके भी कर्म का उदय तो था ही था। समझ में आती बात? तो कर्म के उदय में अगर जीव पराधीन होकर कुछ नहीं कर सकता ऐसा मानेंगे तो कोई रास्ता ही नहीं होता। तो जब जीव हम तत्व विचार करते हैं, पहले ये आठों कर्मों के उदय में मात्र मुनि का जो उदय है, दर्शन मुनि और चारित्र मुनि, उसके उदय में यहाँ मिथ्या तो राग द्वेष हो रहे हैं, तो उसका उदय मिटे ऐसा क्या करेंगे? हम तो कर्म में कुछ नहीं कर सकते। तो मोक्ष मार्ग तो शुरू होना है, समय दर्शन तो होना है। तो जब हम तत्व का विचार करते, ये सब हम जो तत्व पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर षटकारक पढ़ेंगे, निमित्त उपादान पढ़ेंगे, क्रमबद्ध पर्याय पढ़ेंगे, तो जब हम सही तत्व निर्णय तक आते हैं और अपनी आत्मा का लक्ष्य होकर अंदर स्थिर हो जाते हैं, तो तत्व विचार के काल में, अभी स्थिरता तो आगे चली, तत्व विचार के काल में कर्मों में बहुत सारी उथल पुथल हो जाती है। इन सभी मिथ्यात्वादी कर्मों का अनुभव यानी उसका रस हीन होता जाता है, यानी वो मंद मंद पड़ते चला जाता है। राग द्वेष के भी परिणाम मंद मंद होते चले जाते हैं, और ऐसी अवस्था होती है कि दर्शन मुनि कर्म का उदय कुछ काल के लिए रुक जाता है और यहाँ जीव को सम्यक दर्शन भी हो जाता है। यानी कितना भी अंदर बंधा हुआ तीव्र कर्म हो, तत्व विचार से वो मंद पड़ जाता है। सहज रूप से ऐसी अवस्था हो जाती है कि वहाँ उसका उदय भी मिट जाता है और यहाँ जीव को सम्यक भी हो जाता है। यानी कर्म थियोरी तो इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी साइंटिफिक है कि हमें ऐसा लगता है ना कि अरे क्या करें, अभी इतना पाप करके आए हम, कितने भवों का कितना अंदर क्या क्या कचरा पड़ा होगा कर्मों का, कैसे कैसे उदय आएगा, हमको क्या क्या भुगतना पड़ेगा। तो कौन से कर्म कैसे उदय आना रुक जाता है, अंदर पड़े पड़े कैसे टर्न होकर अन्य रूप से होकर निकल जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। और ये सब जीव के फेवरेबल है। जो अपने स्वरूप का विचार भी शुरू करता है उसके तो कर्म में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। अभी अपनी तो कर्म की थियरी नहीं है। हा?
अगर हम मानते हैं कि कर्म के कारण हमको ऐसा बिहेव करना पड़ता है, तो कर्म तो हमारे साथ आना देते हैं एक बार, और कर्म हमको ओवर पावर करे तो जीव परतंत्र बना, तो हमारा मोक्ष जाना कर्मों के हाथ में रहा। जो कर्म है वो बिल्कुल ज्ञान नहीं उसको, और वो हमको कंट्रोल करेगी, बहुत कैसी बात होती है। यानी हमारा एक पॉइंट कहीं आगे पीछे रहता है तो पूरा जो सिद्धांत उनका जो क्रम है वो क्रैश आउट हो जाएगा।
यानी हम ही अपनी कल्पना कर लेते हैं, हम पराधीन है, क्या करें, कर्म ऐसा हमको तकलीफ देता है, इसलिए हमको तकलीफ हो रही है। ऐसी बिल्कुल बातें हैं। हाँ, उसका जो निमित्त बनता है उसका ज्ञान कराया जाता है, परंतु जीव तो पराधीन है नहीं है। जैसे मिथ्यात्व राग द्वेष कर वो भी अपनी स्वतंत्रता से कर रहा है, और इसमें से छूट कर सम्यक को प्राप्त करेगा तो भी अपने स्वतंत्रता से करेगा, कोई कर्म उसका आड़े नहीं आ सकता। तो हमने उसका कुछ बाऊ बना दे या हवा बना दिया है, और फिर हम सोचते क्या करें, हमारे कर्म ऐसे, हमारे कर्म वैसे है।
जो चेतन करता
ये चेतन है, उसमें तो पूरी शक्ति है अपने को समझने की। हाँ,
तो अंतराय कर्म तो हमने तो अभी तो आज हो कर्म की बात करें तो अंतराय कर्म की क्या है, उनकी उनकी चाल कैसी चलती
है? अंतराय कर्म जो है वो अंतराय कर्म सभी लोगों को कब आता है आड़ा, स्वाध्याय में जाने का है तब। टीवी का सीरियल सामने आता है तो कभी अंतराय आड़ा में, वो बहुत समझदार है कर्म।
वो तो ऐसे कहने में आता है,
ये तो
कर्म के कारण हम ढीले पड़ गए हैं, कर्म हमको तकलीफ देता है ये कहते हैं, लेकिन कर्म कुछ नहीं करता है। दो द्रव्यों में अत्यंत भिन्नता है ना भाई, तो जो है ही नहीं वो तुमको क्या तकलीफ करे, और इतना बहुत उसके पीछे दलील कर सकते हैं। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और वो बिल्कुल ज्ञान है ही नहीं उसके पास, तो उसको क्या मालूम अभी मुकुंद के पीछे लगना है क्या और किसी के पीछे।
लेकिन पंडित जी हमारे समय दर्शन में अनंतानुबंधी तो तकलीफ देता ही
उनको कहना है भाई,
कहना तो है
हाँ, तो लेकिन वो कुछ नहीं करता है, ये पहले मछली
वही तो मैंने कहा ना, तत्व विचार के काल में वो अनंतानुबंधी हो या मिथ्या हो सभी मंद मंद हो जाते हैं, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो दोनों ही उसका उपशम हो जाता है, ठंडे पड़ जाते हैं, उसका उदय रुक जाता है कुछ काल के लिए, और यहाँ जीव को सम्य दर्शन हो जाता है, यानी उसका उदय मिट जाता है वहाँ पर, अपने आप मिटता है, जीव को कुछ नहीं करना है उसमें, वो परमाणु सत्ता में पड़े हैं, और जीव यदि फिर दोबारा वैसे राग द्वेष रूप परिणय में कहे तो हाजिर है वहाँ हाथ जोड़कर, उसका उदय चालू हो जाता है। एक बार सम्यक तो होने पर भी जो भ्रष्ट हो जाते है, क्यों हो जाते है? ऐसे ही कोई परिणाम विपरीत हो जाते हैं कि विषयों के उसमें या स्वच्छंद में कहीं या चल जाते हैं वहाँ, तो अनंतानुबंधी है अंदर सत्ता में पड़ा हुआ, उसका उदय चालू हो जाता है, जीव परिणाम करता है तब उसका उदय चालू हो जाता है। ऐसे उदय हुआ और जीव समय को से भ्रष्ट हुआ ऐसा नहीं होता है, दोनों एट ए टाइम, दोनों साइमल्टेनियसली है। जीव के परिणाम को ये कर्म का उदय बताने वाला है, करने वाला नहीं है। क्या कहा, आपके थर्मामीटर में जो कुछ होता है ना, बैरोमीटर में टेम्परेचर दिखाई दिया इतना इतना इतना, तो वहाँ बैरोमीटर ऊपर गया इसलिए बाहर का टेम्परेचर चेंज हुआ क्या? वो तो बताने वाला है कि बाहर क्या टेम्परेचर चल रहा है, ये कर्म का उदय बता रहा है कि जीव के कौन से परिणाम चल रहे हैं, वो कंट्रोलर नहीं है, वो तो इंडिकेटर है, उसका ज्ञापक है, बताने वाले है, वो इतना ही बताते हैं कि जीव के अभी परिणाम कैसे चल रहे हैं। समझे
बस,
ये तो उसको समझाने का दृष्टांत है। देखो ये उदाहरण जो दृष्टांत दिए जाते बाह्य में दिए जाते, तो अंतराय कर्म है तो किसमें निमित्त है, तो जीव के परिणामों में, तो ये दान दूसरे को देना है, ये तो वो तो उसका शुभ भाव है, ये तो समझाने का तरीका है। जैसे दान लाभ भोग उपभोग वीर, ये जीव के गुण है, हम जो अभी सत्कार देख रहे अपने अपने को देता है पर्याय वगैरह, वैसे दान भी अपना अपने को ही देता है, हम यानी स्वयं ही असीम ये सुख का दान अपने को देंगे, उसको हम कहेंगे दान दिया अपने को। लाभ किसका हुआ, हमें असीम आनंद का लाभ लिया, हमने अतीम आनंद का भोग लिया, उसी का उपभोग लिया, वो सब अपने पर घटित करना, ये जीव के गुण है पांचों, जैसे वीर्य ये जीव का गुण है, जैसे दान लाभ भोग उपभोग ये भी जीव के गुण है, और इसमें क्या होता है, बाधा होती है ना, ये संपूर्ण बाधा तो होती नहीं है, इनका तो क्षोभ चलता है। जैसे ज्ञानावरण है, पूरा ज्ञान से रहित कोई जीव नहीं होता है, है थोड़ा तो उसका ज्ञान प्रकट है, ऐसे ये जो पांचों जो है उसमें उसका पूरा उदय कभी नहीं होता, पूरा का मिट जाना, उसमें उसका भी क्षोभ चलता है, यानी जैसे ज्ञान की कुछ न कुछ विद्यमानता है, वैसे जीव का जो वीर्य गुण है उसकी भी कुछ न कुछ विद्यमानता है, वहाँ पर प्रकट अवस्था चल रही है, उसको कहेंगे उसका क्षोभ चल रहा है। यानी जहाँ जहाँ ज्ञान की बात है, ज्ञान की रचना हुई ना, पर्याय में जानने की रचना हुई, तो ये जो जानने का कार्य हुआ उसमें जीव का अपना वीर्य लगा है। हम जो अभी जो जान रहे हैं ना, जो कुछ हमारा जानना चल रहा है, जो यानी इंद्रियों के द्वारा भी जो कुछ ज्ञान चल रहा है, उसमें भी ये वीर्यांतराय का भी कार्य साथ साथ चल रहा है। क्या चल रहा है, उसका भी यथा योग्य उसका वीर्यांतराय का क्षोभ है, तो ज्ञानारण वीर्यांतराय साथ काम करके वो ज्ञान की रचना हो जाती है।
कहते हैं कि सत्यदेव सतगुरु और सत्य शास्त्र और सतधर्म की जो आराधना निराधना जो करते हैं वो उससे बहुत बड़ा अंतराय कर्म बांधता है।
बात सही है, उससे सभी ये ज्ञानावरण है, रचनावरण है, मोहनीय मिथ्यात्व का बहुत बड़ा वहाँ बंद हो रहा है, सभी कर्म बनते हैं। देखो
एक ज्ञानी की आराधना उसके उसका हिसाब सब ज्ञानी की आराधना होती
है। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं समझ में? एक सैनिक राजा ने एक मुनिराज पर उपसर्ग किया, बौद्ध धर्मी था जब उसने उपसर्ग किया तब, और जैनियों का द्वेषी था, तो मिराज पर मरा हुआ सर्प डाला। क्यों? वे ऐसे उनके अभिप्राय में क्या था, किसके आगे कोई जैन मुनि न बने, इतनी उनके अभिप्राय में इतना दोष था। तो कितना मिथ्यात्व का भी पाप लगा और अन्य भी इतना लगा कि सातवें नरक का बंद हुआ, नरक का ही बंद हुई उसके सातवें नरक की। फिर भी बाद में वो मुनिराज का उपदेश भी सुना, उनके जो कुछ बातें देखी, फिर जैनी हुए स्वयं, समय दृष्टि हो गए, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने लगे, क्षायिक समय दृष्टि हुए। तो जो बंदी हुई आयु अभी उसका जो प्रोसेस अलग है, घाता इश्क वगैरह क्या होता है, 84,000 वर्ष की नरकायु रह गई। फिर नरकायु तो चेंज होकर मनुष्य तो नहीं बनेगी उनकी, तो ये नरकायु की नरकायु रहे, अभी थोड़ी हो गई। और फिर वो अभी सम्यक के साथ वहाँ गए है और फिर वहाँ से आकर तीर्थंकर बन के जाएंगे। तो एक मुनिराज के उपसर्ग में अभिप्राय में क्या था, किसके आगे भविष्य में कोई मुनि नहीं होगी, यानी इतना वो तीव्र द्वेष था अनंतानुबंधी टाइप वाला, तो उससे ऐसे बंद हो जाते हैं। परंतु एक बार इतना बंद किया तो अभी क्या करे वो बेचारे, ऐसा नहीं होता है, सुधर गए तो उसमें भी चेंजेस होते हैं।
ठीक है, कर्मों के बारे में बहुत व्यवहारिक कथन किए हैं शास्त्रों में, जैसे हमने देखा ना उस जीव ने चार घाती कर्म का नाश करके अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की, तो हम ऐसा मानते हैं कि वो देव ने या जो अनंत बने उस जीव ने घाती कर्मों को नाश किया, अपने को भी कर्मों को नष्ट करना है, ऐसा हमारा वहां से थिंकिंग चालू होता है। पहले मूल में पकड़ के रखना खूंटा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता है, लेकिन शास्त्र में लिखा है ना वो व्यवहार वचन में, हर जगह निश्चय का कथन नहीं करेंगे तो किस नए का कथन है वो समझना हमारी आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाते हैं अपने दिमाग में।
जैसे हमने देखा ना जीव स्वयं अपनी योग्यता से राग द्वेष रूप परिणमता है, वैसे कारमान वर्गणा भी अपने स्वयं की योग्यता से कर्म रूप परिणमित होते हैं। फिर भी हम कथन कैसे कहेंगे जीव के मोह राग द्वेष के निमित्त से कारमान वर्गणा आई और वो बंदी जीव के साथ बंद हुआ। जीव अपने में स्थिर होता है तो कर्म अपने स्वयं के कारण खिर जाता है, तो हम क्या कहेंगे जीव ने अपने ध्यान आग्नि के द्वारा कर्म को भस्म किया। कथन दो द्रव्यों का मिलकर हो सकता है, परंतु कथन वैसा होने पर भी जीव की अवस्था जीव से जीव की अपने में अपने से होती है और कर्म की अवस्था कर्म में उसके अपने से होती है, दो भिन्न द्रव्यों की बात अपने अपने में चलती है। आधा घंटे, अच्छा अच्छा, हाँ मैं भूल गई, यानी यहाँ लिखा है ना देखो, जब शास्त्र में कथन आता है कि जीव ने कर्म बांधा या कर्म का क्षय किया, तब वह निमित्त का कथन है, निमित्त की उपस्थिति दर्शाने वाला कथन है। इस प्रकार योग्य अर्थ हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में तो निमित्त के कथन बहुत आते हैं, कि हमारी जिम्मेदारी है कि उसमें से सही अर्थ ग्रहण करें, नहीं तो निमित्ताधीन दृष्टि थी और वो और पुष्ट हो जाती। आगे भी वो कल बात चलेगी, अपनी शिष्य गुरु का संवाद जो है उसकी बात करेंगे, अभी यहीं रुकेंगे। बोलो 2400 भगवान की।